नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत में ये सुंदर कथा आती है दशम स्कंद में, उसका कनेक्शन भी रामताल से है। रामताल में गरुड़ जी को चेतावनी दी गई और कालिया को अभयधान हो गया, कालिया को अभयधान प्राप्त हुआ। तो गरुड़ जी का युद्ध होने के बाद में कालिया ने वो रामताल जो है ना, वो बड़ा विशाल जगह था। आज का जो कालिया दह है, जहाँ पर कालिया का दमन किया गया, वहाँ तक पूरा वो स्थान है और उसका नाम है सुंदरक गांव। सुंदरक जो वहाँ पर सौभर मुनि ने तपस्या किया था, तो सुंदरक गांव जो है वो हमारे अस्पताल का तक है। सो वो सब कुछ तपोभूमि है सौभर मुनि की। और उसके एंड में कालिया ने आश्रय लिया जल के अंदर। तो ये बहुत सुंदर और बहुत डिटेल कहानी है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। तो कालिया ने जब प्रवेश किया तो उसका विष जो था वो इतना भयंकर था कि उसके सारे फन उस विष से भरे थे, और उस विष के वजह से, उसके जल में होने की वजह से सारा जल तो विषैला हो ही गया था, लेकिन उस विषैले जल के पृष्ठभाग से जो बाष्प निकलता था ना, उस बाष्प के संपर्क से पक्षी भी मर जाते थे। कालिया देह के ऊपर कोई पंछी उड़ के गया तो सीधा पानी में गिरता था मर के, इतना उसका विष भयंकर था। तो जीव सृष्टि तो समाप्त हो गई, जितनी जीव सृष्टि थी, पेड़ पौधे थे, सब कुछ समाप्त हो गया। एक पेड़ वहां पर जिंदा था कदम का, कभी आपको मौका मिलेगा तो ले जाएंगे। वृंदावन में अभी यात्रा लेके जाना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड वो सब, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत चुस्त लोग चाहिए उसके लिए, भागने के लिए वेरी डिफिकल्ट। तो वो जगह जो है वहाँ पर आज भी बहुत सुंदर वृक्ष है कदम का। तो वो जीवित था इतना विष होने पर भी। इसका कारण बताते हैं, दो कारण बताते हैं आज शास्त्र में। एक कारण था कि जब ही समुद्र मंथन हुआ था तो गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर जब भागे देवताओं के लिए, राक्षस पीछा कर रहे थे और गरुड़ जी उसको लेकर चाह रहे थे आगे। तो उस यात्रा में गरुड़ जी की उस पेड़ पर आकर वृंदावन में उन्होंने विश्राम किया, और उस पेड़ पर भविष्य में यहाँ पर कृष्ण आकर कालिया दमन करेंगे इसके अनुभूति होने के कारण कुछ अमृत के जल उस पर छिड़क दिए उन्होंने, इसलिए वो जीवित रहा, पेड़ बिल्कुल जीवित रहा। दूसरा कारण यह है, वो पेड़ भी खत्म हो चुका था लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान के चरण उसको लगे फिर उसमें जीवन प्राप्त हो गया। दोनों बातें सही है। तो उसके लंबी कहानी है, एक छोटी सी और लंबी दोनों है, क्या करें, बहुत सारी कहानियां हैं, हर एक कहानी में कनेक्शन उस कहानी का है। बहुत सुंदर है ब्रज का लीला जो है ना, बहुत सुंदर है। वो एक गांव है उधर नंदगांव के पास, उसका नाम है गेंदोवा, गेंदोखर, गानबन ऐसा भी नाम है उसका, क्योंकि एक ही गांव में बहुत लीलाएं हुई हैं। तो ये बहुत सारे ने स्पर्श करेंगे वो ये है कि गेंदोवा गांव क्यों पड़ा नाम, क्योंकि वहां पर भगवान गेंद खेलते थे, जो जो काम किया वहां पर वो नाम पड़ा। तो गेंद खेलते खेलते एक दिन क्या हुआ, श्रीदामा ने गेंद लाई थी अपने घर से, सब लोग गेंद उछाल कर खेल रहे थे, तो भगवान ने ना ऐसा एक गेंद उनके हाथ में आई तो ऐसा जोर से फेंका, नंदगांव सीधा जाकर वृंदावन में गिरा, वो जमुना के अंदर गिर गई गेंद। अभी वो रोने लगा श्रीदामा, मेरी गेंद दो। सबने कहा नई गेंद ले लो ना, उसमें क्या है, उसमें क्या रखा है। नहीं, माला माजाज बॉल पाइजे है, तो ऐसा होता है ना बच्चों में, मेरी गेंद चाहिए मुझे, वही चाहिए। तो कृष्ण बोले ठीक है चलो फिर जाते हैं जमुना जी में। तो कृष्ण को पता था कि कालिया नाम का नाग आकर उसने वृंदावन का सृष्टि सब पूरा समाप्त कर दिया अपने विष से, बहुत गर्वीला बहुत द्वेषी, उसको समाप्त करना जरूरी है, इसलिए भगवान ने ये लीला रचाया गेंद फेंकने का। और एक भी उसके पीछे रहस्य है। एक दिन क्या हुआ, गोपियों को मिलने के लिए भगवान आए और बहुत रोब जमाते हुए आए, है ना, उसको कहते हैं हिंदी में इतराते हुए आए। तो गोपियों ने कहा इतना क्यों इतराते हो, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खुद की स्टेप्स हैं। तो वो क्या बोल रहे, इतना क्यों इतरा रहे हो, ये सब कुछ तो राधा रानी ने आपको सिखाया हुआ है, डांस में इतना चलना डुलना जो भी होता है कदम, तो उनकी देन है आपके लिए, इतना क्यों इतराते हो। बोले नहीं, ये स्टेप मेरी खुद की है, ये आपने राधा रानी ने सिखाया हुआ स्टेप में से नहीं है, तो इतना ही गर्व है, तो हमारा हमारे लिए कुछ अद्भुत डांस दिखाओ आप, तो हम मानेंगे कि आपका भी कुछ क्रिएशन है। तो वो भी बात भी उनके मन में थी कि गोपियों को ऐसा एक अद्भुत डांस दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो वो दोनों उद्देश्य मन में लेकर वो वहाँ पर पहुँचे। हाँ, अभी जब वहाँ पहुँचे ना तो सबको पता चला, अभी क्या हुआ कि वहाँ पहुँचते ही सब लोग प्यासे थे, ग्वाल बाल, उन्होंने जाकर ना अनजाने में सब पानी पी लिया उसका, और सब लोग मर गए उधर, सब लोग गिर पड़े। तो सब लोग गिर पड़े, तो भगवान ने अपनी प्रेम भरी नजर, करुणा भरी नजर जो है उनके ऊपर घुमाई। सब लोग देख रहे हैं, अपनी प्रेम भरी नजर जो है ना, दृष्टि पात किया उनके ऊपर, तो सब लोग जीवित हो गए। लेकिन तब तक उनको समझ में आया था कि ये जल में बहुत भयंकर विष है, और सीतामा ने अच्छा नहीं किया, अपने गेंद का जिद किया, और वो सोच ही रहे थे कि कृष्ण को रोका जाए, उसको नहीं चाहिए हमको गेंद, नहीं चाहिए। उतने में कृष्ण उस पेड़ पर चढ़े, अपना कमर पट्टा कस दिया, हाथ पर ऊपर किए, हैप हैप किया और जंप मार दिया पानी के अंदर। तो सीतामा रोने लगा, नहीं चाहिए मुझे गेंद, मुझे तुम चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए। तब तक तो वो छलांग मार चुके थे, सब लोग रोने लगे, कुछ बेहोश होकर गिरने लगे, कुछ रोने लगे। उतने में खबर पहुंच गई, होता ना अभी कुछ डेंजर से हो गया तो सब नंदगांव खबर पहुंच गई। और उस दिन ना बलराम जी नहीं आए थे, पता है क्यों नहीं आए थे, तो बलराम जी का बर्थडे था, बलराम जयंती, तो रोहिणी मैया ने कहा था कि आज मत जाना गौचारण करने के लिए, आज आपका अभिषेक होगा, आपको दान देना है लोगों को। तो बर्थडे के दिन ना लोगों को देना होता है, और हमारे को वो अंग्रेज लोगों ने क्या सिखाया है कि बर्थडे में लेना होता है, कैसा संस्कृति देखो, एग्जैक्टली ऑपोजिट। हम लोग दीपक जलाकर आरती उतार कर बर्थडे मनाते हैं, वो दीपक को बुझाकर मनाते हैं, इज इट नॉट ट्रू। वो दीपक को बुझाए बिना उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है, और हमारे संस्कृति में जिसका बर्थडे है उसको औक्षण करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसके लिए शुभ चिंतते हैं, उसको सुपारी सोना कुमकुम अक्षता इनसे बहुत अच्छा पूजन होता है, फिर वो अपने हाथ से दान देते हैं। ये बर्थडे है जन्मदिन का मनाने का, हमारा कल्चर नहीं है केक काट के बर्थडे मनाने का। हम लड्डू खिलाकर बर्थडे मनाते हैं, अपने हाथ से सबको लड्डू बांटते हैं, दान देते हैं ब्राह्मणों को, उनका आशीर्वाद देते हैं। बर्थडे में सबको देना है, आशीर्वाद लेना है। तो बलराम जी रुके थे घर पे, तो सब लोग घर पे रुके थे। जब खबर पहुंच गई ना, तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, भागवत में लिखा है कि कैसे आए वो कालिया घाट तक, उनको पता नहीं था कहाँ पर है कृष्ण, खेलने गया था गेंदों में, वहां कैसे पहुंच गया। तो वो ना वन में मट्टी में निकले हुए कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों के पीछे 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 चलते 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 वहां पहुंच गए। अमेजिंग ना, देयर इज नो सेट जीपीएस अवेलेबल कि वहां जाओ। वो कहते बीच में जलाशय आया, तो उन्होंने आगे जल चिन्ह देखे तो छलांग लगाकर आगे चिन्हों को फॉलो किया। बीच में कुछ कीचड़ आया तो देखा चरण चिन्ह है, बीच में नहीं दिखा, ऐसे करते करते बहुत मुश्किल से उन्होंने कृष्ण के चिन्हों को अनुकरण करते 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 वहां तक पहुंच गए वो, जहां पर कृष्ण ऑलरेडी जल में कूदे हुए हैं, ग्वाल बाल आधे बेहोश से पड़े हुए हैं। यशोदा माई पहुंचते ही बोले, मैं जाऊंगी जल में, मैं कन्हैया को बचाऊंगी, अगर वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी, अगर वो खत्म होने वाला है तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, आई विल ट्राई टू गो एंड रेस्क्यू। मत जाना मत जाना, नंद बाबा जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जाने की कोशिश कर रही है, बड़ी बड़ी गोपियां कोशिश कर रही हैं, और कुछ उनको पकड़ के रखे हैं, मत जाना मत जाना। इतने में वो लोग उनको मना करते, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े को खो बैठती ना, वैसे अवस्था नंद बाबा के और उनके पत्नी की हुई थी, यशोदा माई की। और बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अंदर बहुत जब छलांग लगाई भगवान ने ना, तो ऐसा जल उछला कि कालिया अपना अंदर इतना रुबाब से बैठा था ना कि मेरे अंदर के पास में आने की भी हिम्मत कोई नहीं करता है। तो ये कौन है बालक जिसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे जल के बीच में छलांग मारा है, इतना जल को उछाल दिया कि पूरा जल जो है ना वो जमीन पर आ गया, बहुत सारा जल। फिर कालिया बाहर आया और उसने कृष्ण पर हमला करना शुरू किया, बहुत घमासान युद्ध हुआ। कालिया ने अपने वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं कॉइल्स को, क्या बोलते हैं, अपने पास में कृष्ण को कस लिया उसने, और उसको कसने लगा जोर जोर से। तो कृष्ण ने अनिमा सिद्धि का प्रयोग किया और सबसे छोटे बनकर फिसल गए उसमें से, और फिर जाकर उन्होंने मुक्के मारे उनके फन पर, बहुत वेदना हुई कालिया को और बहुत चिना झपटी हो गई पानी के अंदर। वो पीछा कर रहा है, कृष्ण भगवान आगे जा रहे हैं, पीछे से मुक्का मार रहे हैं, फिर वो पीछे से आकर पकड़ रहा है, बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है अपने पास के अंदर। बहुत देर घमासान युद्ध होता रहा, फिर भगवान ने जो लात मारी और जो मुक्के मारे, वो कुछ खून निकला, उसके विष और खून निकला, और वो ऐसे पृष्ठभाग पर आया। कैसे आया वो पृष्ठभाग पर, पता है आपको, ऐसे बॉइलिंग वाटर की तरह आया वो विष, है ना, वो पानी पूरा बॉयल हो रहा था विष की वजह से, विष की उष्णता की वजह से। तो जब वो खून और ऐसे बबल्स आए ना बुदबुद जल के ऊपर, तो लग गया कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, ऐसा लगा उनको, बाहर गए लोगों को, तो और लोग बेहोश हो गए। पता नहीं वो कालिया का खून है कि कृष्ण का खून है, हाउ डू यू नो, मोस्टली कृष्ण का रहेगा, क्योंकि कृष्ण इतना सा है, कालिया इतना बड़ा है। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, सबको लगा कि कृष्ण गए, अभी सबको लगा कृष्ण गए। तो जब उनकी उत्सुकता या क्या कहते हैं उसको, एंग्जाइटी या उनका पेन जब चरम सीमा पर पहुंच गया ना, तो भगवान ने सोचा अभी इसको थोड़ा सा अलग मोड़ देना चाहिए। तो भगवान उस समय उसके फन पे चढ़ गए, एकदम उसके फन पर छलांग लगाई उन्होंने, तो वो सब सरफेस के ऊपर आ गए, उसके फन और भगवान। और फिर जो चरण कमल के बारे में सोचकर गोपियां रोया करती थी कि कैसे होगा, ये वन में जा रहे हैं, इनके पैर इतने कोमल है कि ऐसे पकड़ेंगे तो फिर उंगलियां मिल जाएंगी आपकी, समझ में आपको आया, मक्खन में आप डालेंगे तो ऐसे करेंगे तो उंगलियां मिलेगी ना आपकी, इतना मक्खन मुलायम होता है कि आपकी उंगलियां मिल सकती है। वैसे ही कृष्ण का शरीर था, मक्खन से भी मुलायम, पकड़ने से अपनी उंगलियां मिल सकती है, ऐसे उतने चरण कमल कोमल अगर कंकड़ में जाएंगे तो क्या होगा, ये सोचकर गोपियां घर में रोती थी। उनके दिल में इतना कष्ट होता था कि ऐसे कोमल चरण कमल अगर काटने लगेंगे तो कैसा होगा। तो वो जो मक्खन से अधिक मुलायम चरण कमल थे, वो एक एक करके जब फन पे गिरने लगे तो वज्र के समान आघात होने लगा उसके ऊपर। एक है चरण कमल कोमल मक्खन की तरह, लेकिन जिसके सर पर पड़ रहे हैं उसको लगा है कि वज्राघात हो रहा है। बोथ थिंग्स आई सेड ना, ऑल द कॉन्ट्राडिक्शंस रिजाइड इन कृष्णा वेरी हार्मोनियसली। एक साथ ही वो कमल की तरह कोमल भी है मक्खन की तरह, एक साथ वज्राघात का अनुभव भी दूसरे को हो रहा है। और क्या साथ में क्या हो रहा है, एक चरण कमल गिरते ही उसमें से आग और विष साथ में बाहर निकल रहा है, और वो थन जो है, वो फन जो है, वो ऐसे गिर रहा है नीचे, जो टस के खड़ा था ना वो ऐसे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। तो ये अद्भुत डांस उन्होंने दिखाया और गोपियां देख रही हैं उसको। तो अद्भुत डांस कैसे है ये बताइए, इसमें अद्भुत क्या है? एक कारण है कि वो जो जिस पर नाच कर रहे थे वो स्लिपरी प्लेटफॉर्म था, फिसलन पहाड़ी, साबुन का कैसा होता है पानी रहेगा तो कैसे डांस कर सकते हैं, वैसा था। और दूसरा था कि अनस्टेडी प्लेटफॉर्म, अस्थिर पृष्ठभाग, आपको अगर डांस करने को बताया आप यहाँ डांस कर सकते हैं क्योंकि ये स्थिर है, अगर बोलेंगे वहाँ डांस करो कर सकते हैं क्या आप, उधर स्थिर भूमि नहीं है, या अगर बोलेंगे कीचड़ में डांस करो तो कैसे होगा, एक पैर डालते ही पैर नीचे चला जाएगा ना आपका, तो डांस कैसे कर सकते हैं आप, खाली फिसलते रहेंगे। लेकिन ऐसे अस्थिर बदलने वाले भूमि पर, यानी कि कथा कालिया के गिरने वाले फनों पर, टस के खड़े होने वाले फनों पर, फिर गिरने वाले फनों पर, ये सबके ऊपर उन्होंने बहुत ही लीलया नृत्य किया। ऐसा नृत्य आप आज तक किसी ने सिखा नहीं था, ना देखा था, ना सोचा था उसके बारे में। तो ऐसे अस्थिर भूमि पर जो कालिया का सर था, अनेक अनेक फन थे उसके ऊपर, एक साथ वो उसको विष खाली कर रहे हैं उसका, उसको लटका रहे हैं, और साथ साथ दूसरे पर पैर रख के उसको भी लटका रहे हैं, और साथ साथ सुंदर नृत्य भी कर रहे हैं, जो ताल और कदम उसमें थे ना वो कभी किसी ने आज तक सीखे नहीं थे, ना देखे थे। और ये जब नृत्य हो रहा है कालिया का, कृष्ण का नृत्य हो रहा है कालिया के ऊपर, तब आकाश में सब देवता इकट्ठा हो गए, जो डांस करने में, संगीत में, गाने में, सब वाद्य में निपुण देवता है ना, गंधर्व, किम पुरुष, यक्ष, किन्नर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जन्म से ही एक्सपर्ट रहते हैं, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। हाउ मंकीज, जन्म से ही गोल्ड मेडलिस्ट रहता है एथलेटिक्स में, जिमनास्टिक में जन्म से गोल्ड मेडल, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, है ना, वो जन्म ही ऐसा है ना, ये जन्म से एक हाथ में लटकना शुरू कर देते हैं। वैसे वो लोग में देवता लोग जन्म से ही उस विद्या में निपुण होते हैं, वो सारे आकाश में इकट्ठा हो गए और वो कोशिश कर रहे थे कि जिस ताल पर, इस अस्थिर भूमि पर भगवान नृत्य कर रहे हैं उससे मिलाने का कोशिश कर रहे थे, वो ट्राइंग टू मैच विद दैट, लेकिन मैच नहीं कर पाए। अपना अपना बजाते रहे, अपने अपने में संतुष्ट रहे और अपने आप में नाचते रहे, और नीचे कुछ अलग ही चलता रहा और गोपियां अचंभित होकर देख रही थी। इस तरह से गोपियों का अद्भुत डांस देखने का जो इच्छा थी भगवान ने पूरी की। एक एक लीला में बहुत सारी चीज़ें पूरी करते हैं। और कालिया के सारे 100 फनों में से पूरा विष निकाल कर उसको लटका दिया पूरा, मतलब सारा अहंकार, सारा द्वेष जो विष के रूप में था वो समाप्त कर दिया भगवान ने। उसके बाद जब ये विष निकला ना, द्वेष का विष निकला, तो कालिया एकदम शुद्ध भक्त बन गया। हम लोग शुद्ध भक्त क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर द्वेष है। जिस दिन द्वेष चला जाएगा ना, आपके अंदर छुपी हुई शुद्ध भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, मतलब नया कुछ इम्पोर्ट नहीं करना है, अंदर अंदर जो है उसको ही जागृत करना है बस। भक्ति का मतलब क्या है, जो आप एक्चुअली हो उसको रियलाइज करना है, नथिंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। अंदर के वो कोयला होता ना, कोयला और राख जमी, उसको खाली फूक लगा के राख को निकाल देना है, राख को निकालते ही निखारा तुरंत अग्नि में रूपांतर होता है उसका। तो कालिया का सारा द्वेष भगवान ने विष का खत्म किया पूरा, और फिर कालिया एकदम शुद्ध भक्त बन गया, एकदम पश्चाताप करने लगा, नम्र हो गया। और भगवान उसका वध करने वाले थे उस समय, उसकी पत्नियां जो भगवान की भक्त थी, उन्होंने अपने बालकों को, सर्पों को आगे करके वो भगवान के सामने आए। क्यों पता है ना, बालकों को करने से क्या होता है ना, सिंपति, करुणा, कंपैशन जागृत होता है उससे। तो उनको पता नहीं था भगवान कितने क्रोधित है, क्या करेंगे। अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाया कि बालकों को गोद में लेकर वो ऐसे आगे आगे आए। उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना किया भगवान के लिए, अपने पत्नियों के प्रार्थना के वजह से कालिया को मारने का प्लान भगवान ने कैंसिल किया। हम लोग पत्नियों को इतना कभी कभी मूल्य देते नहीं है, लेकिन पत्नियां जो है ना, वो पुरुषों का बहुत बड़ा आधार होता है। एक पतिव्रता नारी गृहस्थ जीवन का 3/4 भार अपने आप ही निभा लेती है। मैं पुरोहित के रूप में विवाह करता हूं तो उसमें ऐसे मंत्र हैं कि 3/4 ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय ओनली गर्ल, ओनली वुमन, ओनली 1/4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड प्रोटेक्शन इज मैंस ड्यूटी, बाकी सारा जो काम है अर्थेशु मंत्री कार्येशु मंत्री अर्थेशु मंत्री कार्येशु माता भोज्येशु माता, ऐसे जितने भी 6 प्रकार के कार्य है वो सब औरत कर लेती है। इसलिए सारे जो विधि है ना गृहस्थ धर्म के, वो पत्नी को पुष्टि देने के लिए होते हैं। पति केवल प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपको यह शक्ति दे, आपको यह शक्ति दे, आपको यह, ऐसे बहुत सारे मंत्र केवल पत्नी के लिए होते हैं। मतलब पति को कुछ करना ही नहीं क्या? हाँ सत्य है ये बात, गृहस्थ जीवन में पत्नी ही आधार है गृहस्थ धर्म का। खाली एक ही काम करना है उसको, अगर वो उसको स्थान प्राप्त करना है तो पत्नी को केवल एक निष्ठ होना है अपने पति से, बस। पातिव्रत धर्म जो है वो अगर पालन करेगी तो उस स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। पातिव्रता नारी का कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है उसको भेद करने का, केवल पतिव्रता होनी चाहिए बस। उसका अगर पति भी शराबी होगा, अगर वो पतिव्रता होगी तो उसके बल से पति तर जाएगा। तो यहां पर मृत्यु हो रही है, भगवान के सामने कौन टिक सकता है? लेकिन पत्नियों ने प्रार्थना किया तो भगवान ने उनकी भक्ति और उनकी प्रार्थना को सुनकर कालिया को मारना कैंसिल कर दिया। तब तक कालिया शुद्ध भक्त बन चुका था, वो भी शरण में आया उनके, बोले माफ करो भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ। उन्होंने धन्यवाद किया आपने भगवान का, पत्नियों ने, कि आपने हमारे पत्नी को पति को छोड़ दिया। तो उन्होंने कालिया को फिर आदेश दिया कि चलो ठीक है तुमको मैं मारता नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने कालिया दया को पूरा विषैला कर दिया है, तुम्हारा यहाँ जाना जरूरी है, यू हैव टू गेट आउट। तो कालिया की पत्नियाँ सर्प पत्नियाँ और कालिया को शुद्ध भक्त होने के बाद यहाँ वृंदावन छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी। बहुत दुख हुआ उनको कि अरे हमने ऐसे व्यवहार किया, भगवान से विरुद्ध व्यवहार किया, इतना विषैला द्वेष मन में बनाए रखा, फिर भगवान ने कहा आपको जाना पड़ेगा। तो आगे ऐसा वर्णन आता है कि उसकी पत्नियां जो भक्त थी और नया नया भक्त बना हुआ पति, वो सब यहाँ पर आए जहाँ पर आप बैठे हो, और यहाँ पर उनको ना बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, और यहीं रुके वो बहुत हेजिटेंटली, मतलब जाना नहीं है फिर भी निकल गए वहां से, लेकिन रास्ता में रुक गए, आगे चलने की हिम्मत और इच्छा नहीं हो रही थी उनकी। तो ये वो स्थान है जहाँ बैठे हुए हैं, और ये कालिया का मूर्ति है, यहाँ पर कालिया आके रुका था और फिर यहाँ से चला गया वो पत्नियों को लेके और फिजी आइलैंड में गया। फिजी आइलैंड में कालिया जो है वो शुद्ध भक्त कालिया है, संत कालिया है। यहाँ पर जो कालिया का वर्णन सुनते हैं वो दुष्ट कालिया का वर्णन सुनते हैं, लेकिन संत कालिया के रूप में वहाँ पर पहुँचा वो। और आज भी फिजी देश में कालिया की पूजा होती है एक संत के रूप में, वो उनकी ड्यूटी है, प्रिसाइडिंग ड्यूटी ऑफ फिजी आइलैंड इज कालिया। तो देखो भगवान के चरणों का प्रभाव देखो आप। और कालिया को और एक प्रश्न मन में आया कि भगवान आप तो मुझे बोल रहे हैं जाओ यहाँ से, लेकिन मुझे गरुड़ से भय है, वो वेट कर रहा है कब मैं बाहर निकलो कर मुझे मारेगा। तो भगवान ने उसको वादा किया, अरे तुम्हारे सर पे मैंने नाच किया है ना, तो मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे सर पे निकला हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। और जब मेरे चरणों का चिन्ह मेरा भक्त गरुड़ देखेगा तो आपको वंदन करेगा, वो मारने का सवाल ही नहीं उठता है, आप निर्भय होके जाओ। तो एको न भुजिनु प्रभु तोमारा चरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान। एक फोटो निकालो। एको न भुजिनु प्रभु तोमारा चरण। तो भक्त गुणगान कर रहे भक्तों भगवान के चरणों का, क्या आपके चरण शोक दूर करने वाले हैं, आपके चरण भय दूर करने वाले हैं, आपके चरण अमरता देने वाले हैं, अमृत की खान है आपके चरण, जिनके चरण का स्पर्श आपको होता है, जिसको होता है वो अमर बन जाता है, निर्भय हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। इन्हीं चरणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया, शिव जी ने शिवत्व प्राप्त कर लिया, लक्ष्मी ने आपके चरणों की सेवा करके पाद सेवन आचार्य का पद प्राप्त कर लिया, वो पाद सेवन के आचार्य बन गई। और यही चरण मैं अपने छाती पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यही चरण मेरा सहारा है, ऐसे भक्त लोगों ने गुणगान किया हुआ है। तो वो चरण चिन्ह देकर कालिया फिर निर्भय होकर निकला, पर यहाँ पर आके रुका, फिर यहाँ से फिजी आइलैंड गया। और एक समय पर जब लीला हुई तो भगवान ने सोचा कालिया से अभी शुद्ध भक्त बन गया तो कुछ सेवा ली जाए उससे। भगवान ने कहा कालिया पक्षी बन जा, तो सर्प के पंख फूटे और वह सर्प पक्षी बना। तो वो शुद्ध भक्त सर्प पक्षी जो है उसके पीठ पर बैठकर भगवान ने स्वर्ग लोकों की यात्रा किया, सैर किया, सैर। तो कालिया ने उनको टूर दिया और सभी स्वर्ग लोगों के ऊपर से भगवान उड़ रहे थे और सब देवता उनको प्रणाम कर रहे थे कि हमारे ऊपर से भगवान जा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं सब स्वर्ग लोगों में। तो पूरी स्वर्ग लोगों की सैर की कालिया ने भगवान को कराई और फिर यहाँ पर छोड़ा और फिर वापस यहाँ से भगवान को आदेश मानकर वो आगे चले गए। तो भगवान के संपर्क से अद्भुत परिवर्तन होता है और हमारे जीवन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल कालिया के जीवन में होगा, हमारे जीवन में नहीं होगा। जो उनके चरणों का सहारा लेंगे उनके चरणों में जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। तो ये कथा हो गई इस जगह इस कहानी की। इसका सार आचार्य बताते हैं कि कालिया का मर्दन जो है वो द्वेष का मर्दन है, क्योंकि कालिया द्वेष रूपी था, द्वेष का मूर्तिमान प्रतीक था वो। तो कालिया का दमन करने से भगवान बताते हैं कि द्वेष एक ऐसी चीज है जो हमको अभी तक दुनिया में बनाए रखी है और द्वेष के कारण हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं, भगवान और भगवान के भक्तों का द्वेष, इसके कारण हम लोग यहाँ दुनिया में आकर शरीर धारण करके रह रहे हैं। तो अगर ये द्वेष से मुक्त होना है तो कृष्ण का ही सहारा लेना होगा, और कोई टेक्निक नहीं है इसके अंदर, कोई योग प्राणायाम कोई क्रिया विधि कुछ नहीं है, भगवान के नाम का जप और भगवान की शरण, इससे ही ये द्वेष भगवान ही निकाल सकते हैं। हमारे प्रयत्न से द्वेष निकलने वाला नहीं है, जब भगवान हमारे साधना से भक्ति से रिझेंगे तब उनकी कृपा से वो द्वेष निकाल देंगे। और हम अहंकार करेंगे कि मैं द्वेष मुक्त हो गया, फिर द्वेष अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये कृपा का कारण है ना, ये काम वासना जो है वो भी हम मिटा नहीं सकते, वो हमको मुक्त करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान का शरणगति शरणागति स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। दूसरी कहानी यहां पर है, इसी जगह पर, वो देख रहे हैं आप वहां पर, वो अजगर है, अघासुर, उसका भी बड़ा इतिहास है। वो बकासुर और पुतना का भाई था, एल्डर ब्रदर, पुतना बहन थी, बकासुर छोटा भाई था और अघासुर बड़ा भाई था। तो अघासुर ना इतना भयंकर राक्षस था कि ब्रह्मा लोक तक उसके भय की लहरें पहुंच गई थी, इतना भयंकर था वो, सब देवताओं को उसने ऐसा भयभीत करके रखा था। तो पूरा अलग चैप्टर है, उन्होंने क्या क्या देवताओं को कैसा भयभीत किया था। देवता लोग कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन राक्षस इतने भयंकर थे, ये कहते रावण से भी भयंकर राक्षस थे कृष्ण के समय के। रावण तो कंस के सामने कुछ भी नहीं था, रावण तो शिव धनुष को हिला भी नहीं सका नहीं, और कंस ने विष्णु धनुष को उठाकर 100 बार उसको प्रत्यंचा लगाई थी। तो शास्त्र लिखता है कि रावण से कई गुना बलवान कंस था, और साथी भी कंस के उतने ही बलवान थे, रामायण के राक्षसों से ज्यादा। तो इतने देवताओं को भयभीत करके छोड़ दिया था उसने। तो जब ही भगवान को अपने पुतना का वध हो गया, बकासुर का भी वध हो गया बाल्यपन में ही, फिर अघासुर आया और यहाँ पर ऐसे ना मुंह खोल के बैठ गया, उसका ऊपर का जो था ना मुंह का हिस्सा वो बादलों में था, और नीचे कैसा था ना, ऐसा दिल्ली आगरा हाईवे जैसा था, ऐसा ही वर्णन आया है, राजमार्ग ऐसा लंबा उसका नीचे का हिस्सा था कि आपको लगा कि नया हाईवे पैदा हो गया। तो ग्वाल बाल खेलते खेलते आ गए यहाँ पर, वो सोचने लगे अरे ये नया हाईवे कहाँ से आ गया। कुछ कहते हैं नहीं नहीं हाईवे नहीं है, ये राक्षस भी हो सकता है। तो कुछ बोलते तो क्या हुआ, कृष्ण है ना, राक्षस भी होगा और हम चले भी गए तो कृष्ण है ना। तो हमारे गुरुजी बताते हैं उनके लिए, हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर किसी को किस चीज का भय है तो अघासुर का चैप्टर पढ़ना चाहिए, कि कैसे निर्भय होकर कृष्ण पे पूरी निष्ठा रखते हुए ग्वाल बाल भिन्न दास चले गए उसके अंदर, बोले देखा जाएगा क्या होगा। उनके मन में चर्चा हो रही है, हो सकता है राक्षस होगा, हो सकता है हाईवे होगा, हो सकता है कुछ खिलौना होगा, हो सकता है कुछ भी होगा, लेकिन कुछ भी होगा तो कृष्ण है ना। ऐसे करके ना वो सब खेलते खेलते अंदर चले गए और वो खोल के बैठा हुआ है, कृष्ण आएगा तो बंद कर दूंगा, और कृष्ण वहां पर पेड़ पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सभी ग्वाल बाल चर्चा करते 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 डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ना हाँ ना, फिर भी जा रहे हैं अंदर, दे आर कंटिन्यूइंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड डिस्कसिंग, खड़े होकर बात नहीं कर रहे, अंदर जाते जाते ही बात कर रहे हैं। तो कृष्ण को भी ना, भागवत में लिखा है कृष्ण को भी इतनी श्रद्धा देकर आश्चर्य हुआ कि इतनी श्रद्धा मेरे ऊपर उनको है तो मुझे भी कुछ करना होगा। अभी सुन रहे आप, हरे कृष्णा टेक के बैठेंगे तो निद्रा देवी हावी हो जाएगी आपके ऊपर, मैं टेक के बैठा हूँ क्या? देखो कैसे बैठा हूँ, मैंने भी भोजन किया है। तो कृष्ण को लगा कि मुझे इस विश्वास का प्रतिसाद देना होगा, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ फेथ। तो फिर कृष्ण उतरे और अंदर चले गए। कृष्ण के अंदर जाते ही मुंह बंद हो गया, और अंदर तो इतना भयंकर दर्प है ना, अंदर तो विष का भयंकर, जैसे कोई खोलता हुआ ज्वालामुखी होगा ना, तो अंदर ऐसे वातावरण था। सब ग्वाल वाल मर गए उसके अंदर, कृष्ण उसके अंदर मुख के अंदर। तो उसको लगा मैं विजयी हो गया, अभी कृष्ण कोई मेरे मुख के अंदर गया तो खत्म ना वो। तो कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाया अंदर। कहते हैं कि पहली बार कृष्ण ने कोई सिद्धि का उपयोग किया, उसके पहले कोई सिद्धि का उपयोग नहीं किया। स्तनपान किया, गला दबाया, पैर लगा दिया, ऐसे खत्म, राक्षस खत्म हो गए। पहली बार ये सिद्धि का उन्होंने प्रयोग किया, महिमा सिद्धि का, यानी शरीर को बढ़ाया उन्होंने अपना। और अगासुर के मुंह के अंदर इतने बड़े हो गए कि उनका मुंह जो है चौकअप हो गया, उनकी आंखें सॉकेट से बाहर आ गई, और उसका सर के पीछे फाड़ कर भगवान बाहर आ गए, और अगासुर का वध हो गया। फिर सारे ग्वाल बालों को भगवान ने बाहर निकालकर दृष्टिपात से उनको जीवित कर दिया। तो उस समय सब ग्वाल बालों ने मिलकर जयति जयति जयति, बोलो आप लोग, यानी कि जय हो जय हो जय हो। संस्कृत में उसको जयति कहते हैं, जयति जयति। तो इस गांव का नाम पड़ा जयत, जयत नाम पड़ा क्योंकि यहां पर जयति जयति का उद्घोष हुआ था। लेकिन क्या हुआ इसके बाद में, बहुत अद्भुत घटना हुई कि इन्होंने जयति जयति किया और ये लोग यहां से जमुना किनारे गए, स्नान किया और भोजन करने को बैठे। तब तक अभी घर पे नहीं गए ना, दिन में एक लीला हो गई, तो अभी भोजन करना है, स्नान करके खेलना भी है। तब तक ब्रह्मा लोक तक खबर फैल गई कि वो भयंकर हमको भयभीत करने वाला राक्षस था अगासुर, उसका कृष्ण ने वध कर दिया। और वो कृष्ण जो 7 साल का बालक है, छोटा सा बालक जो है, वो भगवान है, ये भी बात वहां पर फैल गई, क्योंकि सबको पता नहीं था कि ये भगवान नीचे गए हुए हैं। तो ब्रह्मा के पास खबर पहुंची, तो ब्रह्मा के पास इतना न्यूज था पहले भय का, सो मच न्यूज वॉज देयर, कि उसने विश्वास नहीं किया इसके ऊपर कि हाउ कैन अ स्मॉल चाइल्ड किल सच अ डेडली डीमन। तो ऊपर से खबर आती रही थी, मार दिया उसको, 7 साल के बालक ने मार दिया, और वो भगवान है, वो भगवान है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, इम्पॉसिबल। तो बाद में क्या किया, अभी उसका क्या करना है, लोग तो बताते जा रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, आंखों से जाकर देखेंगे, खुद जाकर, आई विटनेस, सीइंग इज बिलीविंग, लेट अस गो एंड सी। तो वो अपने राजहंस पर बैठ कर आए, आकाश में अभी तक है, तो क्या देख रहे हैं, कमलाकार सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अभी भगवान भोजन कर रहे हैं, अभी आपको जगने का समय है, भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, चिना झपटी कर रहे हैं, इसका डब्बा का निकाल के खा रहे हैं, वो अपना मुंह का निकाल के खिला रहे हैं, अपने मुंह का निकाल के भगवान उनको खिला रहे हैं, इसका डब्बा उड़ाया जा रहा है, कोई कैच कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई वापस कृष्ण को लाके दे रहा है, उसका डब्बा छीन के फिर उसका खाना कोई और खा रहा है, फिर कृष्ण का डब्बा कोई छीन रहा है, वो लपेटा जा रहा है, और किसी के हाथ में कोई खा रहा है, ऐसे बहुत आनंद हो रहा था, एवरी टाइप ऑफ हैप्पीनेस वॉज देयर। कोई दुख नहीं कि भाई राक्षस का वध हुआ, कि भयंकर घटना हुई, आज सब लोग टेंशन में है, एकदम अभी तक हार्ट बीट कम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, एकदम एंजॉयिंग, कंप्लीटली एंजॉयिंग। उतने में वहां पर मधुमंगल आया लस्सी का पात्र लेके, देखा सब लोग सबका छीन छीन के खा रहे हैं, मेरा भी छीनेंगे, उसके पहले पहुंचने के पहले मेरा लस्सी पी लेता हूं। उतने में सबने देख लिया, अरे मधुमंगल आ रहा है, मधुमंगल अकेले लस्सी पी रहा है, सब लोग भागे उसकी ओर, वो घटाघट पीने लगा, आखिर घोट गाल में भर लिया, अभी पीने को उतना मुमकिन नहीं था फास्ट में, तो जाके कृष्ण ने गाल पे गुलचा लगा दिया उसके, और गुलचा लगा दिया तो उसके मुंह में से लस्सी की धार निकली, वो कृष्ण ने हाथ में पकड़ कर पी ली, वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से विदाउट टिकट, उनको यहाँ पे एंट्री नहीं है, फिर भी वो देख रहे हैं, अरे ये बालक तो सबकी जूठन खा रहा है, तो ग्वाल बाल है, वैश्य समाज के लोग हैं, ये ब्राह्मण भी नहीं है, ऊपर से ऐसा खा खिला रहे उसको, मुंह के खिला के जूठन खिला रहे, ये भगवान नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, हम तो इतना सागर संगीत उनको भोग लगाते। तो विश्वास नहीं हुआ, उधर आके भी लीला देख रहे हैं, बहुत सुंदर अद्भुत लीला देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है अंदर, श्रद्धा नहीं है, डाउट है मन में। भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले जीव को ना इस जीवन में शांति है ना अगले जीवन में शांति, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो देखो आगे क्या होता है, जब भगवान की परीक्षा करने का प्रयास किया, भगवान आनंद ले रहे हैं और गाय चर रही थी, अरे गाय को बछड़े को उठा लिया उन्होंने, सब लोग आनंद ले रहे हैं बहुत मजे में लग रहे, वो बछड़े चर रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल आगे आगे जा रहे हैं, कुछ देर बाद होश आया, अरे बछड़े कहाँ हैं, तो सब लोग उठे ऐसे, भगवान ने कहा नहीं 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 आप अपने आनंद में बाधा मत डालो, आई एम देयर नो यू एंजॉय आई गो एंड सर्च, तो खुद गए। देखो अपने भक्तों के आनंद में भगवान भी बाधा डालना नहीं चाहते, खुद कष्ट करेंगे और भक्तों को सुख देने का प्रयास करेंगे, इसलिए भक्तों को सुख बोले आप कंटिन्यू करो मैं जाता हूँ। तो वो देखने गए, हाथ में ऐसा चावल है दही है मीठा, और ढूंढ रहे बछड़े कहाँ गए, देखते हैं कुछ समय तक चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, आगे चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो समझ गए ब्रह्मा जी आकर बछड़ों को चुरा लिया। ये सोचकर आए वापस को देखते हैं सारे ग्वाल बाल भी गायब, जैसे भगवान वहां चले गए सारे ग्वाल बाल को ब्रह्मा ने उठा लिया और ग्वाल बालों को बछिया बछड़ों को अपने ब्रह्मा लोक में छुपा दिया, और वो लौट के आए देखने के लिए, देखता हूं क्या करता है बालक अभी। लेकिन वो एक क्षण में लौट के आए, लेकिन उनका एक क्षण जो था ना यहाँ का एक साल था फ्रॉम टाइम कैलकुलेशन, तो अपने एक क्षण में लौट के आए, लेकिन यहाँ पर एक साल बीत गया, और एक साल क्या हुआ बीच में, वापस आए ना, बीच में बहुत कुछ हो गया अभी टाइम नहीं बताने के लिए, बीच में एक साल में इतनी घटनाएं हो गई, इतनी घटनाएं हो गई। कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन, जैसा जैसा समय आता है ना ही मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, तो वो बाद में बताता हूँ। लेकिन वो एक साल में लौट के आए ना एक क्षण के बाद में उनके, तो क्या देख रहे हैं वही सीन है पूरा, वही सब लोग जमुना किनारे बैठे हैं गोलगा गोलाकार बैठे हैं, खा रहे हैं, चिना झपटी चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, क्या क्या उड़ा रहे हैं बॉक्स सबके। तो उनको लगा कि क्या हो गया, उधर भी है योगी लोग है क्या, उधर से यहाँ पर प्रकट हो गए वहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग। तो उनके आश्चर्य में भर डालने के लिए सारे ग्वाल बाल विष्णु बन गए। तो कृष्ण ने क्या किया, उस शाम को जब घर जाने का समय आया तो सारे ग्वाल बाल खुद बन गए वो, क्योंकि मैयाओं को क्या जवाब देंगे, अरे हमारे बालकों को लेकर गए थे बच्चों को लेकर गए थे, कहाँ है सब, अकेले लौट के आए तुम। तो सारे ग्वाल बाल खुद बन गए, सारे बछड़े बछिया भी खुद बन गए और घर गए रोज की तरह, वही नाच गाना रोज का, वापस आना साल भर गौचारण रोज चल रहा है वो। तो अभी जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, कृष्ण ग्वाल बाल बने हुए उनको देख रहे हैं वो, सारे बछड़े भी कृष्ण है बछिया भी कृष्ण है सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण है और कृष्ण भी कृष्ण है, लेकिन वो बछड़े के रूप में है। तो उसके आश्चर्य में भर डालने के लिए उन्होंने क्या किया, सबका विष्णु रूप प्रकट किया। अभी सारे बछिया सारे बछड़े सारे ग्वाल बाल विष्णु बन गए, और उनके आश्चर्य में भर डालने के लिए क्या किया, हर एक उस विष्णु के साथ 33 करोड़ देवता का एक सेट उनकी पूजा कर रहा है। कैन यू इमेजिन दिस, ब्रह्मा जी का चार दिमाग में कितनी बुद्धि है, देखो आप पूरी बुद्धि फेल हो गई उस समय, टोटल क्या बोलता है क्रैश हार्ड डिस्क क्रैश पूरा कंप्लीट, नो एक्सप्लेनेशन गिवन व्हाई दिस इज हैपनिंग हाउ दिस इज हैपनिंग। और सभी विष्णु स्वरूप हर एक देवता सेट उसकी पूजा कर रहा है, खुद भी देख रहे हैं उसको कि मैं भी उनकी पूजा कर रहा हूं, खुद भी देख रहे हैं, अरे पूरा अचंभित हो गए वो। उसके बाद और भर डालने के लिए सारे विष्णु रूप गायब कर दिए, खाली कृष्ण बनकर ढूंढ रहे अपने बछड़े कहाँ गए। तब उनको समझ में आया, अरे ये बालक नहीं है तो कृष्ण है, मेरे आराध्य दैवत है ये, मेरे पिताजी है, मेरे स्वयंभू पिताजी है ये, मैंने कौन सी गलती की उनको सब भक्तों से अलग कर दिया, भागे और बालकों को लेकर आए। एक साल बालक उधर रहे ना, यहाँ के एक साल वहां का एक क्षण, तो वो जो बालक थे वो उस दिन ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना किया, फिर क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, वो सब हुआ ड्रामा सब कुछ। भगवान को ना लग रहा था जल्दी फिनिश कर भैया तेरी प्रार्थना, मेरे ग्वाल बाल को तुमने रखा था ऊपर, मुझे खेलना है उनके साथ, आई एम ईगर टू प्ले विद देम, तुम्हारी प्रार्थना ही खत्म नहीं होती है। ऐसे बृहद भागवतार में लिखा है भगवान ने कि ब्रह्मा जी प्रार्थना किए ही जा रहे थे और भगवान सोच रहे थे कि बस कर बाबा अभी बस हो गया, अब एक तो गलती करना बाद में मेरा टाइम पास करना ऊपर से प्रार्थना करके, ओ सुनने को बोलना सुनते रहो, ये कौन सा अत्याचार है हमारे ऊपर। हाँ ये भगवान का दिल है, उनको ब्रह्मा जी का पश्चाताप प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको खेलने में इंटरेस्ट है अपने ग्वाल वालों के साथ। आप करते होंगे अपना ऑफिशियल काम, प्रार्थना करना, पश्चातापी, माफीनामा सब करते होंगे, लेकिन भगवान आए किसके लिए है? खेलने के लिए आए यहाँ पर। हो चु तुम लोग आके बीच में विधान करते हो, वैसे उन्होंने लिखा है उनके लिए कि देवता लोग आते हैं बीच में गलती करते हैं, इंद्र आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, बहुत सारी गलती करके बाद में पश्चाताप करते हैं, मेरा बहुत समय, कीमती समय जो मुझे ग्वाल बालों के साथ बिताना है उसमें व्यवधान डालते ही हो। तो जब ये प्रार्थना वार्थना हो गई, ग्वाल बाल वापस आ गए, तो वो पहली बार एक साल के बाद वो ग्वाल बालों को लेकर घर पहुंचे। बीच में एक साल गुजर चुका है, भागवत कथा में भी एक साल बीत गुजर चुका है। ग्वाल बाल घर गए और सबसे पहले उन्होंने बोला, बाबा आनंद बाबा, अशोदा मैया, सुना तुमने आज इसने सांप को मार डाला, आज इसने सांप को मार डाला, बाप रे, ऐसा वर्णन किया पूरा। तो उस समय परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी को, अरे एक साल के बाद में कैसा हुआ ये सब कुछ? क्योंकि बीच का इस किस्सा उन्होंने बताया नहीं, डायरेक्ट बताया कि वो घर गए, उन्होंने बताया तो एक साल के बाद में कैसे बताया? ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि बीच में ब्रह्मा आए, चुरा के ले गए, एक साल उधर ऊपर गया, उसके बाद पहली बार एक साल के बाद में ओरिजिनल ग्वाल बाल लौटे, तो उनके लिए तो आज ही है ना, उनको पता नहीं एक साल बीत गया करके, वो तो निद्रा में थे, वहाँ पर सम्मोहन में थे, वो लौट के आए तो पहली बार बताया। तो फिर परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव महाराज ने इसका भेद, रहस्य भेद किया। अभी मुझे बहुत मोह हो रहा है बताने के लिए एक साल के बीच में क्या हुआ। सभी ग्वाल बालों के मन में एक ही इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने, मैया के, सब मैयाओं के मन में था, अपने बालक पर प्रेम था लेकिन कृष्ण पर बहुत प्रेम था। तो सबकी इच्छा थी कि काश कृष्ण हमारे बालक होते तो हम उनको स्तनपान कराते, हम उनको दुलारते, अपने बेटे की तरह प्रेम करते। सभी गोपियों की इच्छा थी कि हमें कृष्ण का पति के रूप में मिलना चाहिए। सभी गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बछड़ा बन जाए, तब उनको अपना स्तनपान कराएंगे। तो बछड़े भी सब कृष्ण थे, तो सभी गायों की इच्छा पूर्ण की भगवान ने। बछड़े सब कृष्ण बने थे तो ब्रज भूमि की हर एक घास को चाट चाट कर ब्रज भूमि के रज को उन्होंने चाटा। कितना ब्रज पर उन्होंने प्रेम दिखाया कि कण कण के जितने ब्रज में जितने भी घास के पत्ते हैं वो उसके साथ कण कण रज का चाटा उन्होंने भूमि को। और हर एक गौ माता को स्तनपान करके उनके बछड़ा बनने का, पुत्र बनने का, मतलब बालक बनने का आनंद लिया। फिर जितने बालक थे वो सब मैयाओं का स्तनपान किया। अभी वो तो मधुमंगल ऐसे अलग अलग नाम के बालक थे लेकिन वो कृष्ण ही थे, और सभी माताओं का स्तनपान किया उन्होंने, तो सबको माता बनने का आनंद दिया उन्होंने। और फिर एक दिन कृष्ण भगवान ने बोला, बाबा बहुत अच्छे स्टार आकाश में बैठे हुए हैं, अच्छी राशि, अच्छा सब कुछ मुहूर्त बना हुआ है, सभी गोपियों का, सभी ग्वाल बालों के साथ विवाह कर देना चाहिए। बाबा भी राजी हो गए। और उस समय उस बीच में सारे ब्रजवासियों का जितनी कन्याएं थी वो सबका ग्वाल बालों के साथ विवाह हो गया। इसका मतलब सारी गोपियां कृष्ण की पत्नी बनी और एक साल तक कृष्ण के साथ ही रही, लेकिन रूप अलग अलग थे उनके। और ब्रह्मा जी बीच में देखने को आए ब्रज में, उनको लगा कि हाहाकार मच गया होगा, सबके बालक गायब, सबके बछड़े गायब, मतलब क्या सोचे क्या होगा। तो यहाँ पर तो वाजंत्री शहनाई बज रहे हैं सब जगह पर, सबकी शादियों के लड्डू फूट रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे मैंने ऐसा काम किया कि ब्रज में हाहाकार मचना चाहिए, लेकिन यहाँ कर तो सब वाद्य बज रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, शादी की बधाइयाँ हो रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया कुछ। ये बाद में समझा कि ये सब कृष्ण ही बने हुए हैं, इतनी शक्ति केवल कृष्ण के पास हो सकती है। ब्रह्मा जी का भी दिमाग खराब हो गया पूरा, और फिर वो नतमस्तक हो गए। फिर भगवान ने उनको माफ नहीं किया, फिर ब्रह्मा जी ने ब्रज भूमि की दंडवती परिक्रमा की है। क्यों बोले दंडवती परिक्रमा? दंडवत करते करते पूरा ब्रज में परिक्रमा करना है। ब्रह्मा जी ने 84 कोस ब्रज भूमि की दंडवती परिक्रमा किया है। जब ब्रज रज का आश्रय लिया है तब उनको माफी मिली हुई है, तब उनका तेज वापस लौट के आया है, पूरा निस्तेज हो गए थे वो। तो ये वो भी भूमि है जहाँ पर अघासुर का वध हुआ था, इसलिए अघासुर का डायरेमा बनाया है। एक अभयता का एक कथा आई है, इसको आप पढ़ने से आप खुद भी अभय हो सकते हो, निर्भय हो सकते हो। तो दो की लीला यहाँ पर है, एक अघासुर की और एक कालियानाग की। बोलो जय धाम की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।